तो इसीलिए वो किसी तरह का रिस्क न लेते हुए फटाफट से बोला, हाँ हाँ भाई, आप एक काम कीजिए, आप आस्था भाभी के साथ आइए, तब तक दादाजी को हम लोग लेकर चलते हैं। और वैसे भी इनके इतने हट्टे खट्टे पोते हैं, वो सब किस दिन काम आएंगे, और ये आहन तो देखो कितना ज्यादा बॉडी बिल्डर है। तब तक दादाजी को हम लोग लेकर चलते हैं, और वैसे भी इनके इतने हट्टे खट्टे पोते हैं, वो सब किस दिन काम आएंगे, और ये आहन तो देखो कितना ज्यादा बॉडी बिल्डर है। अब आगे, क्या ये दादाजी को नहीं उठा पाएगा, ये दादाजी का भार यानी वजन नहीं संभाल पाएगा। ऐसा कहकर वे सब एक एक करके दादाजी को पकड़कर खड़े हो गए थे और उन्हें ऊपर की ओर लेकर जाने लगे। अब आस्था हैरानी से उन चारों को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, कान्हा जी, अब तो हम यहाँ आपके दर्शन के लिए भी आ गए हैं, फिर भी आप हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? आपने क्यों इस खड़ूस को हमारे पास छोड़ दिया? और दादाजी को क्या हो गया है? क्यों बार बार ये मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम की मुसीबत हमारे गले में डाल देते हैं? आस्था मन ही मन में कान्हा जी को बोले जा रही थी, अचानक उसे अपनी बाहों पर किसी का गहरा दबाव महसूस हुआ। जैसे ही उसने पलट कर देखा, अरमान लाल सुर्ख आंखों से आस्था को ही घूर रहा था। अब खुश हो तुम? तुम्हारी नौटंकी हो गई? जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल रहा है? मुबारक हो। मेरे दादाजी तुम पर अंधा विश्वास करते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना लड़की, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहना, ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना। कुछ दिनों के लिए तुम्हें जो केयरटेकर की जॉब दी गई है, केवल उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। और एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, इतना ही नहीं तुम्हारी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है, समझी तुम? अब चलो फटाफट से। अरमान आस्था को धमकाते हुए उसकी बाजू को कसकर पकड़कर उसे सीढ़ी से उठाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाने लगा। आस्था अपने हिसाब से चल रही थी क्योंकि उसकी टांगों में दर्द था, उसकी घुटनों पर चोट लगी थी और सुबह भी वो फिर से गिर गई थी क्योंकि अरमान ने उसे बाथरूम में धक्का दिया था। लेकिन फिलहाल तो उसके अब घुटनों के साथ साथ उसके बाजू में भी दर्द हो रहा था, जो बाजू अरमान ने कसकर पकड़ा था। लगभग आस्था का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने की वजह से आस्था ने जो सूट पहना था उसकी लेगिंग्स में से ब्लड निकलकर सीढ़ी पर दिखाई देने लगा था। अरमान एक नज़र भी आस्था की ओर नहीं देखा, वो तो बस गुस्से से उसके बाजू को पकड़ता हुआ सीढ़ी पर चला जा रहा था। तभी एक श्रद्धालु वहां आया जो दर्शन करके वहां से निकल रहा था। अचानक रुकते हुए बोला, अरे बेटा रुको रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम लोग, और ये क्या हुआ है, इस बच्ची के तो घुटनों से बहुत खून बह रहा है। अब जैसे ही उस श्रद्धालु ने ये कहा, अरमान हैरान और कंफ्यूज हो गया। पहले तो उसने उगलती हुई नज़र उस श्रद्धालु पर डाली और उसके बाद उसकी बोली गई बात पर ध्यान रखते हुए उसने एक नज़र आस्था की ओर देखा। आस्था की आंखों के आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। आस्था की आंखों में उस वक्त बहुत सारे आंसू थे, साथ ही साथ उसकी निगाह आस्था पर से होते हुए उसके घुटनों पर गई जहां से खून निकल रहा था और उसकी कुछ बूंदें मंदिर की सीढ़ी पर गिरी हुई थीं। अब जैसे ही अरमान ने ये देखा, वो हैरान हो गया और जल्दी से उसने आस्था का बाजू छोड़ दिया और सोचने लगा कि अगर दादाजी ने देख लिया कि आस्था को चोट लगी है तो उसका इल्ज़ाम भी उस पर आ जाएगा। अब अरमान नहीं चाहता था कि दादाजी उसे किसी भी तरह से नाराज़ हों, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त तो कर सकता था लेकिन अपने दादाजी की नाराज़गी वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे अचानक से आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं आस्था, जो कि उस वक्त दर्द की वजह से बहुत रो रही थी, अरमान को इस तरह से गोद में उठाते हुए देखने पर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। अचानक से उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे और उसने अपने दोनों हाथों को अरमान के गले में लपेट दिया था, क्योंकि उसमें वाकई इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाकी की सीढ़ियां अपने आप से चल सके और उसे हर हाल में मंदिर पहुंचना था। वहीं वे सभी दादाजी, आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव, जो कि मंदिर में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, उन्होंने भी एक नज़र पीछे की ओर देखा और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि अरमान सिंघानिया ने आस्था को अपनी गोद में उठाया हुआ था, तो उन चारों का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था। आहान बेख्याली से बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ध्रुव भी बेख्याली में बोला, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? सुमित बोला, ये कैसे हो सकता है? आकाश ने भी चौंकते हुए कहा, डेविल किंग की बाहों में लड़की? कहीं ना कहीं चारों बेख्याली और नासमझी से उनकी ओर देखकर जो कुछ उनके मुंह में आ रहा था वो बोले जा रहे थे। तभी ही दादाजी थोड़ा सा तेज आवाज में बोले, अरे नालायको, उन दोनों को पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चलो थोड़ी सी सीढ़ियां और रह गई हैं, फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों को ये सब बोला, उन चारों को अपनी बेख्याली से बाहर आए और अब उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि उनके सामने जो कुछ हो रहा है वो असल में सपना नहीं है, वाकई डेविल किंग के हाथों में उस वक्त आस्था थी। आहान बोला, राधा कृष्ण के मंदिर में आकर अरमान भाई के अंदर भी अपनी राधा के प्रति प्यार उमड़ आया है। दादाजी, जो कि आस्था और अरमान को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी ओर नहीं देखे। वो अचानक से आहान के सर पर टपली मारते हुए बोले, तेरी फालतू की भविष्यवाणी हो गई हो तो क्या, अब हम चलें? ऐसा कहकर दादाजी चारों को एक बार फिर वहां से लेकर जाने लगे। वहीं अरमान ने जब से आस्था को उठाया था उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि ये लड़की उसके होशो हवास पर हावी हो रही थी। आस्था उसे एकदम कोमल सॉफ्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि उसने एक प्यारी और मासूम सी डॉल को अपनी गोद में उठा रखा था। अरमान को ये फीलिंग्स बड़े ही अजीबोगरीब सी लग रही थी और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा उलझन हो रही थी। वो इस तरह से आस्था को अपने करीब नहीं देख सकता था, लेकिन क्योंकि आस्था के घुटनों में चोट लगी थी और शायद वो चोट उसी की वजह से लगी थी, तो इस वजह से वो उसे लेकर सीढ़ी पर चढ़ रहा था। वहीं आस्था, जिसने अरमान के गले में अपनी दोनों बाहें लपेट रखी थी, उसे अरमान के अंदर से आती हुई परफ्यूम की खुशबू बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। वो फ्रेग्रेंस ऐसी थी जो इस वक्त आस्था के होशो हवास पर छा गई थी। आस्था को बार बार इसे स्मेल करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोचने लगी, ये राक्षस दिखने में भी अच्छा है और उसके अंदर से ये कितनी अच्छी परफ्यूम की स्मेल आ रही है। आस्था ने कितनी ही देर तक अरमान की स्मेल को महसूस करती रही और फिर अगले ही पल वो सोचने लगी, इस राक्षस की वजह से ही हमें चोट लगी और हम हैं कि इसकी खुशबू से मदहोश होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। ये सोचते हुए आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक आस्था ने अपनी आंखें खोली, तब आस्था ने देखा कि अरमान उसे गोद से उतार रहा है। तब आस्था डर गई कि कहीं इस राक्षस ने उसे स्मेल करते हुए महसूस न कर लिया हो, इसीलिए शायद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा या तो वो उसे सीढ़ी से फेंक देगा। इसीलिए आस्था ने जोर से डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी। अब जैसे ही उसे एहसास होता है कि अरमान उसे गोद से नीचे उतारने वाला है, तुरंत ही वो चीख पड़ी, नहीं नहीं, हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज।
अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। तब आस्था ने अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर अपनी नजरें झुका ली और तभी उसने अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से महसूस किया। वहां तो सीढ़ियां थी ही नहीं, एक्चुअल में मंदिर आ चुका था और अरमान ने मंदिर में घुसते ही आस्था को नीचे उतार दिया था। आकाश, ध्रुव, सुमित और आहान भी उस वक्त वहीं खड़े थे और जैसे ही आस्था ने कहा कि हमें यहाँ मत उतारिए प्लीज, अब तो वे चारों भी हैरान हो गए। तब दादाजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे बेटा, हो सकता है कि बहू का मन हो कि तुम उसे गोद में लेकर ही पूरे मंदिर के दर्शन कराओ, तो थोड़ी देर और गोद में उठा लो ना। और वैसे भी इतनी स्टील बॉडी बनाई है, इसका क्या फ़ायदा अगर तुम अपनी नाजुक सी 45 किलो की बीवी का वज़न तक नहीं उठा पा रहे हो। अब दादाजी ने जैसे ही ये कहा, अरमान हैरान परेशान हो चुका था और साथ ही साथ उसकी नज़रें उन चारों पर पड़ी जो आँखों ही आँखों में एक दूसरे से इशारों में बात करने में बिजी थे। उन चारों को देखते ही अरमान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो लगातार सबको घूरने लगा। और जैसे उन चारों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, किसी की जलती हुई नज़रें उन्हीं पर हैं, इसलिए उन्हें आपस में बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस वक्त वे सब फटाफट से इधर उधर मंदिर की ओर देखने लगे। आहान डाइवर्ट करते हुए कहने लगा, अरे वाह आस्था भाभी, मंदिर तो बड़ा ही खूबसूरत है। आस्था मुस्कुरा दी। तभी अचानक वहां पर घूमते हुए कुछ श्रद्धालु आए जो कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। अब उन्होंने जैसे ही वहां पर आस्था को देखा तो वे उसे देखते ही रह गए, क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। हालांकि आस्था ने अपने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके गहने, लंबे और घने बाल जो कि उसकी पीठ से काफ़ी नीचे तक थे, वे शो हो रहे थे और वे लोग आस्था को कितनी ही देर तक देखते रहे। एक्चुअल में श्रद्धालु कोई और नहीं बल्कि विदेशी लोग थे, क्योंकि ये उस शहर का ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा मंदिर था, तो यहाँ पर विदेश से श्रद्धालु आते रहते थे और दर्शन करने के लिए यहाँ आया करते थे। तभी उनकी नज़र आस्था पर पड़ी। आस्था इंडियन ड्रेस में बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तभी उनमें से एक फॉरेनर आगे आकर कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी मैम, कैन आई टेक वन पिक? एक्चुअली यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गेट कैप्चर योर ब्यूटी इन माई कैमरा। अब जैसे ही उस फॉरेनर ने ये कहा, अरमान जलती हुई नज़रों से उस फॉरेनर की ओर देखने लगा था। अरमान की किसी भी चीज़ पर कोई नज़र तक नहीं डाल सकता है और यहाँ तो ये फॉरेनर अरमान सिंघानिया की बीवी को अपने फ़ोन में कैद करने की बात कर रहा था, तो भला अरमान उसे क्यों नहीं घूरता? तभी फॉरेनर की बात सुनकर आस्था शर्मा उठी थी, क्योंकि भले ही उसे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि वो फॉरेनर क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि आस्था ने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की थी। उनके गांव में कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी आस्था ने अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी खासी इंग्लिश सीखी थी, लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं पाती थी, पर हाँ, समझ ज़रूर जाया करती थी। उस फॉरेनर की बात सुनकर दादाजी अरमान की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अरमान की आंखों में आए हुए गुस्से को देख लिया था। वे जल्दी से उस फॉरेनर से बोले, Excuse me, actually she is our daughter-in-law and we don't like that any unknown person take her pic. I hope you don't mind and you understand. जैसे ही दादाजी ने बड़े ही शांति से प्यार भरे शब्दों में उसे ये समझाया, उस फॉरेनर ने तुरंत अपने हाथों को जोड़ लिया और कहने लगा, या सर, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट लुकिंग दैट गर्ल, शी इज़ वेरी प्रिटी, सो आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू टॉक विद हर, आई होप यू डोंट माइंड। ऐसा कहकर वो फॉरेनर जल्दी ही अपने जो बाकी के लोग थे उनके पास चला गया था और अरमान उस फॉरेनर को घूरता रहा जब तक कि वो फॉरेनर उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गया। अरमान को इस तरह से उस फॉरेनर को घूरता हुआ देखकर आहान बोला, यार ऐसा लगता है कि अरमान भाई तो उस बेचारे फॉरेनर को अपनी ही आंखों से उसका खून कर देंगे। तब ध्रुव तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखते हुए आहान से कहने लगा, अगर इस वक्त तू चुप नहीं हुआ और तेरी बात अरमान ने सुन ली तो तेरा क्या होगा? तू उसके बारे में सोच, उस फॉरेनर की चिंता तो तू छोड़ ही दे। ऐसा कहकर वो ध्रुव को छेड़ने लगा।